ಸಹಸ್ರಾರ್ಧನಂದನ ವ್ರಜಜಾನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜಜಾನರಂಜನ
परमेश्वरी दास ठाकुर का भी भाव दिवस हर एक में सिर्फ एक एक घंटा बोलना तो मुझे यहाँ पर श्रीमान श्री गुरुचरण प्रभु जी ने बताया कि मैं अभी श्री प्रभुपाद जी के सातवें स्कंद से श्रीमद् भागवत के बारे में भी पढ़ूं और बाद में दिन के समय अगर समय मिलेगा तो बाकी आचार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो फेस्टिवल्स होते हैं वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, वो अपने आप में ड्यूटीज के समान हैं। जैसे आप ड्यूटी की सेवा करते हैं, आर्च विग्रह की सेवा करते हैं, ऐसे ही उत्सव होते हैं गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, ये दिन भी अपने आप में पूजनीय हैं। और इस दिन अगर हम श्रवण और कीर्तन में लगते हैं तो बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। पुराणों में कहानी आती है कि एक बार एक विषया थी, बहुत खराब प्रोफेशन थी, और उसको नाचना गाना अच्छा लगता था। और एक दिन वह एक मंदिर में गई जहाँ पर लोग उत्सव मना रहे थे, उसको पता नहीं था, और उसने भी थोड़ी सेवा कर ली, थोड़ा श्रवण कर लिया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं विष्णु दूत आए उनको वापस धाम में ले जाने के लिए, क्योंकि वो दिन उसको पता नहीं था वो राधाष्टमी का दिन था। ऐसे जो विशेष जो वैष्णव कैलेंडर के अनुसार दिन होते हैं, उस दिन श्रवण और कीर्तन का महात्म्य ज़्यादा होता है। श्रवण और कीर्तन तो हर समय महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली आज के दिन। और दूसरा कारण है क्योंकि हमें व्रत रखना होता है, तो श्रवण कीर्तन करते हैं तो पता नहीं चलता, माइंड को एब्सॉर्ब रखने। परीक्षित महाराज जब भी श्रीमद्भागवत सुन रहे होते हैं इतने मग्न हो जाते हैं कि वो कथा सुनते सुनते बोलते हैं कि अब हे ब्राह्मणों, मैं आपके प्रति समर्पित जीव हूँ, अभी वो तक्षक सांप आ जाए मुझे काट ले, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा मन भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान विष्णु की कथा सुनने में लगा हुआ है। तो ये एक सत्य है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप कोई चीज़ जब सुनने में मग्न होते हो तो आपको पता नहीं चलता भूख और प्यास का। मुझे याद है बचपन में मैं भी क्रिकेट कॉमेंट्री सुनता था, कई बार घंटों घंटों सुनने में भी यू नो पता नहीं चलता था। ऑफकोर्स वो उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन, लेकिन कृष्ण कथा जो है ये परम सत्य है और ये भगवान से अभिन्न है। तो श्री गुरुदेव, श्री प्रभुपाद और समस्त आचार्यों की आशीर्वाद मांगते हुए, आप सबका भी आशीर्वाद मांगते हुए, मैं श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद से थोड़ा सा चर्चा शुरू करूँगा। और स्पेशली मैं उन विषयों पर थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ जो जनरली हम नहीं जिस पर ध्यान देते। जनरली समय कम होता है तो हम शाम के समय होता है, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को तकलीफ दी और अंत भगवान प्रकट हुए, तो ड्रामेटिक। लेकिन हम लोग जो पहले के भाग हैं जिसमें कि श्री प्रभुपाद तात्पर्य में प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं, उनके महिमा का गान करते हैं, मैं उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा आज की सुबह की क्लास में। सबका आशीर्वाद मैं चाहता हूँ। सब बोली हरी हरी, जोर से बोली हरी हरी। हरी के नाम में सारे आशीर्वाद होते हैं। ये दो अक्षर शास्त्र में बोला गया कि सारे वेद पुराण रामायण महाभारत भागवत ये दो अक्षर में हरी। तो हरी के नाम से जो भी कार्य शुरू होता है वो सब मंगल में। स्पेशली प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं लॉर्ड नरसिंहदेव अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव डिस्ट्रॉयज ऑल इन स्पीशियसनेस, सारे अमंगलों को दूर करने वाले। इसलिए मैं शुरुआत वहाँ से कर रहा हूँ जहाँ पर हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान ले लेते हैं और वरदान लेने के बाद बहुत शक्तिशाली होने के कारण सब देवताओं को तकलीफ देने लगते हैं। और उस समय सारे देवता जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहाँ से मैं शुरू करूँ। तेषाम अविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निखन सनद्यन्ति ककुभ साधु नाम भयंकरी। उस समय देवताओं के सामने एक दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ी जो कि उस व्यक्ति से आ रही थी जो भौतिक आंखों को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वो आवाज़ बादल की आवाज़ की तरह गंभीर थी और वो बहुत प्रोत्साहन देने वाली थी और सारे डर को दूर करने वाली थी। वो आवाज़ भगवान की थी और वो आवाज़ कह रही थी माँ भैष्टा विबुध श्रेष्ठा सर्वेशां भद्रस्तु वा मद दर्शनम ही भूतानां सर्वश्रेयो उपपद्यते। ज्ञातम एतस्य दुरात्मयम् दैत्य आपसत्य यतः तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षिता। भगवान बोल रहे हैं, हे विद्वानों में श्रेष्ठ, घबराओ मत, मैं तुम्हें सौभाग्य की कामना करता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त मेरे बारे में श्रवण और कीर्तन करते हैं और मुझे प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। आप मेरे बारे में श्रवण और कीर्तन करें और मुझे प्रार्थना अर्पण करें, क्योंकि ये सब आशीर्वाद देने वाले हैं। मैं हिरण्यकशिपु के कुकर्मों के बारे में जानता हूँ और बहुत शीघ्र ही उसको अंत करने वाला हूँ। जब तक मैं प्रकट नहीं होता, आप सब्रता के साथ इंतजार करें। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, कभी कभी लोग भगवान को देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये शब्द यूज किया है मत दर्शनम, मेरे को देखना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति। दूसरे शब्दों में भगवान को समझना या भगवान को देखना या भगवान से बातचीत करना, वो भक्ति की प्रगति पे निर्भर है। और भक्ति मतलब नवविद्या भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, क्योंकि ये सब भक्ति की क्रियाएं परम सत्य के स्तर पर है। मंदिर में मूर्ति की पूजा करना और उनका दर्शन करना या उनकी महिमा गाना, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सब नवविद्या भक्ति जो है, ये भगवान को देखने के अलग अलग तरीका हैं, क्योंकि भक्ति में जो भी किया जाता है वो व्यक्ति को भगवान के संपर्क में ले आता है। भगवान की आवाज़ जब भक्तों के सामने प्रकट हुई, हालांकि भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वास्तव में आवाज़ सुनने से उनको भगवान का अनुभव हो रहा था, क्योंकि भगवान की ध्वनि के रूप में भगवान प्रसन्न थे। इस भौतिक दुनिया में शब्द में और व्यक्ति में अंतर होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान को देखना, भगवान को प्रार्थना अर्पण करना या भगवान की कथा को सुनना, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान की कथा गाने में संतुष्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कीर्तन। कीर्तन करना और हरे कृष्णा ये शब्द सुनना, ये भगवान को देखने के बराबर है। आई विल रीड द स्टेटमेंट इन इंग्लिश ऑल्सो। परफॉर्मिंग कीर्तन एंड हियरिंग द साउंड द वाइब्रेशन हरे कृष्णा इज एक्चुअली सीइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड डायरेक्टली। वन मस्ट रियलाइज दिस पोजिशन एंड देन वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ द लॉर्ड्स एक्टिविटीज। ये जानने पर व्यक्ति भगवान के परम सत्य स्वभाव को जान सके। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय। श्रीमद् भागवत ये एक दिव्य ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की कथाओं का वर्णन है, इसलिए पूछनीय है। श्रीमद् भागवत और भगवान इसमें कोई अंतर नहीं है, शुद्ध भक्त और भगवान इसमें कोई अंतर नहीं है, तुलसी और भगवान इसमें कोई अंतर नहीं है, और गंगा और भगवान इसमें कोई अंतर नहीं है। विशेष करके श्रीमद् भागवत, क्योंकि इसमें भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है और अवतारों में भी विशेष करके जहाँ पर प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन आता है इस सातवें स्कंद, वो बहुत ही धन्य माना जाता है। तो आज का जो प्रवचन है विशेष करके प्रहलाद महाराज के गुणों के ऊपर देना चाहता हूँ, कि प्रहलाद महाराज के बारे में भगवान स्वयं क्या बोलते हैं और स्वयं कैसे उनके जीवन की शैली होती है। महाजन ये न गत सपंथ, जो महात्माओं ने मार्ग दिखाया है या जो मार्ग महात्माओं ने स्वयं पालन किया है, उसका अनुगमन करने से हम जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं मु नारद शंभु कुमारो कपिलो मुनो प्रहलादो भीष्म जनको बलिर्वयस्य किं भयम्। ये 12 महाजन हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, शंभु शिव जी, कुमार, चार कुमार, भगवान कपिल, मनु कुमार, कपिलो मनु, प्रहलाद महाराज, भीष्म और जनक महाराज, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी महाराज और यमराज। तो उन 12 महाजन में से एक हैं प्रहलाद महाराज। और उनके चरित्र पर मनन करना, के चरित्र पर ध्यान करना, ये बहुत हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला है। आज ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, ये उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहा है। देवता बहुत पीड़ित थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु कोई आशीर्वाद मिला ब्रह्मा जी से कि उसको कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई जानवर नहीं मार सकता, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात्रि में, न आकाश में न धरती पे, न अस्त्रों से न शस्त्रों से। इसलिए उसकी शक्ति बढ़ जाने के कारण उसका अभिमान बहुत बढ़ गया और वो देवताओं को पीड़ित करने लगा। ऐसे बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि जब वो भौहें ऊपर करता था, फ्राउनिंग आईब्रोज से बोलते हैं, गुस्से से, सब देवता भी डर जाते थे और वो सब पूरे प्रकृति पे उसका कंट्रोल था। हिरण्यकशिपु अगर बोलता है कि अभी टेम्परेचर कम हो जाए तो टेम्परेचर कम हो जाता, इतनी उसकी शक्ति थी। स्वर्गवासी जो है स्वर्ग लोग छोड़कर चले गए हिरण्यकशिपु के भय से, इतना वो शक्तिशाली था। और जब देवताओं उनकी शक्ति से परेशान होकर भगवान के पास जाकर मदद मांगते हैं, और उस समय भगवान की आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है, जो आज अभी भी श्लोक में पढ़ा। भगवान बोल रहे हैं, हे विद्वानों, तुम डरो मत, तुम मेरी श्रवण और कीर्तन करो और मेरे को प्रार्थना अर्पण करो, क्योंकि इससे तुम्हें सब आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मैं बहुत जल्दी प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का अंत करूँगा। भगवान भक्तों को दिखा रहे हैं कि अभय बनने का तरीका क्या है, निर्भय बनने का तरीका क्या है। वो बता रहे हैं कि आप मेरी महिमा का श्रवण और कीर्तन करो, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि श्रवण और कीर्तन जो हरे कृष्ण शब्द है वो भगवान को देखने के बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान को देखना और उनकी महिमा को सुनना, कृष्ण कथा जो है वो कृष्ण का ही अवतार है। और जब हम बार बार इस श्रवण और कीर्तन की विधि में लगते हैं तो अपने आप हमारी आंखों में वो प्रेम का अंजन लगता है, इसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। नहीं तो हिरण्यकशिपु ने भी भगवान को देखा जब भगवान प्रकट हुए, लेकिन क्योंकि उसके अंदर भक्ति की आंखें नहीं थी, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं सका और भगवान के संग का लाभ नहीं ले सका। चैतन्य भागवत में कहानी है कि जब चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त को बोलते हैं कि तुम मेरे सामने नहीं आ सकते, 10 लाख जन्म के बाद ही प्रकट हो गए, तो मुकुंद बहुत प्रसन्न रहते हैं कि 10 लाख जन्म, सिर्फ 10 लाख जन्म बाद मुझे भगवान का संग मिलेगा। और महाप्रभु उसको तुरंत बुला लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। तो मुकुंद दत्त प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन तो हिरण्यकशिपु को भी हुए, आपके दर्शन हिरण्याक्ष को भी हुए, आपके दर्शन उस धोबी को भी हुए जो कंस का धोबी था, इसलिए मुझे आपके सेवा भावना चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान को देखना, जब भगवान कृष्ण भी धरती पे थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल न्यू दैट ही वाज द सुप्रीम लॉर्ड, गिने चुने लोगों को मालूम था, भीष्मदेव को मालूम था, पांडवों को मालूम था, अधिकांश लोगों को पता नहीं था वो भगवान। भक्त्या माम अभी जानना था, सिर्फ भक्ति के द्वारा भगवान के तत्व को जाना जा सकता है। और भक्ति का मतलब है नवविद्या भक्ति, जो श्री प्रभुपाद यहाँ पर पर्पट में इस पर इलाबरेट कर रहे हैं। भगवान उनसे कह रहे हैं कि आप भक्ति की क्रियाओं में लगे रहो और मैं शीघ्र ही आकर उनका नाश करूँगा। जो व्यक्ति देवताओं का, भगवान का, वैदिक शास्त्रों का, गाय और ब्राह्मणों का और अंत में मेरा विरोध करता है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और फिर भगवान बताते हैं उनको कि जिस समय हिरण्यकशिपु मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद, जो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, इनका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। जब वो प्रहलाद पर आक्रमण करेंगे उस समय मैं प्रकट होऊंगा, और उनके ब्रह्मा जी के सारे वरदान के बावजूद उन वरदानों को पूरा करते हुए मैं उनका अंत कर दूंगा। श्रील प्रभुपाद ये जो अगला श्लोक जो अभी मैंने बताया उसके तात्पर्य बताते हैं कि वैष्णव अपराध कितना कितना गंभीर चीज़ होती है। वो बताते हैं कि सारे पाप क्रियाओं में वैष्णव अपराध जो है सबसे भयंकर चीज़ है। वैष्णव के चरण कमल में अपराध इतना भयानक है कि चैतन्य महाप्रभु उसकी तुलना एक पागल हाथी के साथ करते हैं। जैसे एक सुंदर बगीचे में अगर बहुत मेहनत से कई वर्षों से मेहनत करके पौधे उगाए गए हों, पेड़ उगाया गया हो, जब एक पागल हाथी प्रवेश करता है तो उसको नष्ट कर देता है। ऐसे जो व्यक्ति ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो सारे मंगल क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे पाप किए थे लेकिन भगवान प्रकट तब हुए जब उसने प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध करना शुरू किया। ये भगवान के लिए असहनीय है ये अपराध। कोई व्यक्ति अगर काम और क्रोध के प्रभाव में हम सब हैं, अधिक हम सब मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं आपके प्रति अपराध नहीं कर रहा, लेकिन आप में से भी अधिकांश लोगों को काम और क्रोध का प्रभाव लगता हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पर तात्पर्य बोल रहे हैं कि ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ वैष्णव अप्रूट्स ऑल ऑस्पिशियस एक्टिविटीज, सारे मंगल क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए वैष्णव अपराध से। प्रहलाद महाराज का यहाँ पर वर्णन किया है शब्द निर्वैर, निर्वैर जिसका कोई शत्रु नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के लिए ऐसा शब्द है अजात शत्रु, अजात शत्रु यानी इसके शत्रु जन्मा ही नहीं है। इसका मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों के भी शत्रु होते हैं। प्रहलाद महाराज के पिता उसको अनेक रूप से मारने का प्रयास करते हैं, पहाड़ से गिराते हैं और सांप को भी डालते हैं, जहर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया प्रहलाद महाराज निर्वैर है। यानी कोई व्यक्ति सोच रहा है कि भक्त मेरे शत्रु हैं लेकिन भक्त उसको अपना शत्रु नहीं मानते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सबके अंदर भगवान कृष्ण है। प्रहलाद महाराज महाभागवत भक्त थे, सबसे ऊँचे स्तर पर थे भक्ति के, इसीलिए वो किसी को अपना शत्रु नहीं मान रहे थे। हालांकि क्योंकि दूसरे व्यक्ति को शत्रु मान रहे थे इसलिए अंत में भगवान का नाश कर देते, और नाश करने के बाद भी प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान बोलते हैं आप कुछ वरदान मांगो, कुछ वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं व्यापारी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मर्चेंट, मैं व्यापारी नहीं हूँ कि मैं कुछ मांगू, लेकिन अगर आपको देना चाहते हैं, मेरे पिता उन्होंने आपके प्रति बहुत अपराध किए थे, उनको क्षमा कर दो। तो निर्वैर सर्वभूतेषु एक गीता के 12वें अध्याय में भगवान के भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। समो मित्र शत्रु च मान अपमान, मान और अपमान को समान समझना, शत्रु और मित्र को समान समझना। जीसस क्राइस्ट भी प्रभुपाद हमेशा प्रहलाद महाराज, जीसस क्राइस्ट और हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं टॉलरेंस के। एक व्यक्ति की महानता का परिचय कैसे होता है कि कितना वो असहनीय चीज़ों को सहन कर सकता है, कितना वो तरोरी व सहिष्णु है। जीसस क्राइस्ट को बिना कारण उनको गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी भी चलाया गया, लेकिन अंत समय तक वो उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिन्होंने उनको सजा दी बिना कारण के, फॉरगिव देम फॉर देयर नो नॉट, को माफ करो। यहाँ पर प्रभुपाद जी विशेष करके भागवत का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, अजात शत्रु व शांत साधव साधु भूषण। ये भगवान कपिल की शिक्षाओं से तितिक्षा कारुणिका सूर्य सर्व उद्धानम, कि वैष्णव जो है वो तितिक्षा सहनशील, सूर्य सर्वभूतानाम सबके मित्र, जैसे कृष्ण सबके मित्र हैं वैसे भक्त भी सबके मित्र हैं। इस दुनिया में राजनीति होती है कि मेरा और तुम्हारा, मेरा और आपका, शत्रु और मित्र, अगर सब पॉलिटिकल पार्टी से एक साथ हो जाए तो पॉलिटिक्स ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं हो, लेकिन फिर पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिशियन के समस्या हो जाएगी, क्या करें। इसलिए प्रहलाद महाराज के जब टीचर होते हैं शंद और अमरकर, उनको कई बार राजनीति सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं इससे मुझे कोई रुचि नहीं है, ये जो अपना और पराया सोचना, इसलिए बंधन का कारण है। अहम मामेति, एक भक्त देखता है कृष्ण, सब कुछ कृष्ण है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र देखी इष्ट देव स्फूर्ति, सब जगह पर अपने इष्ट देव देखते। इसलिए प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया कि वो कभी किसी से शत्रुता नहीं करते, और अगर कोई व्यक्ति उनसे शत्रुता करते हैं तो उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन हालांकि वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते सर, भगवान क्षमा नहीं करते, इसलिए अंत में उसका नाश हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में यही प्रहलाद महाराज जो है वासुदेव दत्त के रूप में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो वासुदेव दत्त बोलते हैं कि भगवान सारे जीवात्माओं का उद्धार कर दो, सब भगवान आपके धाम चले जाए, और अगर आपको लगता है कि ये पापी हैं तो इनके सबके पाप मुझे दे दो, मैं इनके पाप के लिए नरक जाने को तैयार हूँ। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वैष्णव की कंपैशन है, दया की भावना है। श्री प्रभुपाद अपने गुरुदेव श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर को तात्पर्य में कोट करते हैं और ये बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट भी ऐसा कहते हैं अपने अनुयायियों के लिए कि मैं आपके सारे पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपने अनुयायियों के लिए बोलते हैं। लेकिन वासुदेव दत्त यानी प्रहलाद महाराज, उनकी कंपैशन और भी ज़्यादा है, और भी दया है। वो सोच रहे हैं सारे जीवात्मा, जो उनके अनुयायी हैं या जो उनके निंदक हैं या जो उनसे कोई संबंध नहीं है, सबका उद्धार करना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने प्रार्थनाओं में बाद में भगवान नरसिंहदेव को कि कुछ लोग होते हैं जो मौन व्रत धारण करते हैं, हिमालय में जाकर रहना चाहते हैं अपने आप के स्वयं के कल्याण के लिए, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं उन मूर्खों की मुझे बहुत चिंता है जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं। ये प्रहलाद महाराज की भावना है, और हमारा जो मिशन है, इसका मिशन है वो प्रहलाद महाराज के मूड को फॉलो कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद का मिशन है तो प्रहलाद महाराज की भावनाओं पर आधारित है। जैसे प्रहलाद महाराज उस स्थान पर रहना चाहते हैं दूसरों के उद्धार करने के लिए, ऐसे वासुदेव दत्त बोल रहे हैं कि दूसरों के पापों को ग्रहण करो, ऐसे श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब गौड़ीय मठ स्थापना करते, बल्कि अधिकांश गौड़ीय मठ वो जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर वो मठ चाहते थे। तो वो तीर्थ स्थानों में मठ चाहते थे, वृंदावन, मायापुर, नैमिषारण्य और पुरी, इसके साथ साथ मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये स्थानों में मंदिर की स्थापना करते, और उनके ही पदचिन्हों में चलते श्री प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क, लंदन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस जगह के मंदिरों की स्थापना की, जिससे कि दूसरों को कृष्ण भक्ति मिल सके। तो प्रहलाद महाराज का जो भावना है वो दया के भावना, दया की भावना है दूसरों के कल्याण के लिए। और ऐसे भक्त जो है सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्षमा नहीं करते। अगर भक्त के प्रति अपराध होता है, जैसे श्रीवास आंगन में गोपाल चापल श्रीवास के प्रति अपराध करते हैं, तो श्रीवास ठाकुर उस अपराध को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु उस अपराध को स्वीकार करते हैं, इसलिए श्रीवास गोपाल चापल का पतन हो जाता है, और बाद में उनसे माफ़ी मांगने के बाद वो अपराध से मुक्त हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति की लंबी आयु, ऐश्वर्य, सुंदरता और विद्या, ये चारों गुण महत अपराध से नष्ट हो जाते हैं जब कोई महात्माओं के प्रति अपराध करते हैं। हिरण्यकशिपु के चार पुत्र बताए गए यहाँ पर, और उसमें से प्रहलाद सबसे श्रेष्ठ थे। प्रहलाद अभुन महमस्तेशम गुणेर महत उपासकः, वो सारे दिव्य गुणों के सागर थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुण तत्र समाहसत सदा, हराव अभक्तस्य कुतो महत गुण। बताया गया जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है उसके अंदर सारे सद्गुण अपने आप प्रकट हो जाते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान का भक्त हूँ और मैं शुद्ध भक्त हूँ और मेरे अंदर कोई सद्गुण नहीं है। अगर कोई शुद्ध भक्त है तो अपने आप सद्गुण प्रकट होंगे। जैसे मृग की कस्तूरी होती है, उसे सुगंध को छिपाया नहीं जा सकता, ऐसे एक शुद्ध भक्त के गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, हालांकि वो नहीं भी दिखाना चाहे। तो प्रहलाद महाराज का यहाँ बताया गया कि उनके अंदर सारे सद्गुण थे। श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक वैष्णव को अपने गुणों के द्वारा जाना जाता है, जो वैष्णव है उसके गुण से पहचाना जाता है कि कौन वैष्णव है। और अगर कोई वैष्णव नहीं है, अगर उसमें भौतिक गुण है भी, तो वो गुण सिर्फ मानसिक स्तर पर है, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के गुण का डिटेल में वर्णन किया गया। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संदो जितेंद्रिय वॉज कंप्लीटली कल्चर्ड एज अ क्वालिफाइड ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण के रूप में। योग्य ब्राह्मण के गुण गीता में बताए गए हैं, क्षम दम तप शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो ये जो ब्राह्मण के गुण हैं वो अपने आप वैष्णव में आ जाते हैं। वैष्णव यानी वो ब्राह्मणों से भी ऊंचा स्तर है। प्रहलाद महाराज ही उदाहरण है कि व्यक्ति का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। प्रहलाद का जन्म जो है वो एक असुर परिवार में, उसके पिताजी हिरण्यकशिपु, लेकिन उनके अंदर जो गुण है वो वैष्णव के गुण है। सारे ब्राह्मणों के गुण, शील चरित्र, बहुत अच्छा चरित्र, सत्य संधो, बहुत अच्छा अपने परम सत्य को जानने की शक्ति, इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल, और सबके प्रति वैसा ही प्रेम जैसे परमात्मा का प्रेम होता है। जितना व्यक्ति स्वयं परमात्मा के संपर्क में आता है, उतना ही वह सब जीवात्मा के प्रति प्रेम दिखाने लगता है। और यहाँ पर बताया गया कैसे प्रहलाद महाराज सब जीवात्माओं से अलग अलग व्यवहार करते हैं। जो उनके आदरणीय व्यक्ति होते, जो उनसे बड़े होते उम्र में या योग्यता में, उनका वो हाथ जोड़कर उनकी सेवा करते। जो गरीब होते उनको पिता के समान प्रेम दिखाते, और जो उनके बराबर होते उनके साथ वो भाई के समान प्रेम दिखाते। और अपने टीचर, अपने शिक्षक, अपने गुरु भाइयों को वो भगवान, अपने सीनियर गुरु भाई होते उनको भगवान के समान आदर देते। इस तरह से प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन किया गया। उनके अंदर बिल्कुल अभिमान नहीं था, जो कि विद्या, धन और सुंदरता से प्राप्त होता है। अपनी इंद्रियों में वश होना, इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ कॉमेंट करते हैं। धीरा धीर प्रिय जनो, धीरा धीर जन प्रिय करो, निर्मत्सर उचित हो। छठ गोस्वामी अष्टक में छह गोस्वामी के बारे में बताया गया कि वो धीर और अधीर दोनों प्रेम करते थे, दोनों से प्रेम करते थे। काइंड टू द जेंटल एंड टू द रफियंस। एक वैष्णव मतलब को सबसे प्रेम करना। जैसे मेरे ख्याल से कल जयानंद ठाकुर का जो भी व्यक्ति उनसे मिलता था, स्वाभाविक रूप से उनके प्रति प्रेम जागृत होता। कई लोग ऐसे होते जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, कोई दुकानदार होते उनको भगवान से कोई प्रेम नहीं होता, लेकिन जब वो जयानंद ठाकुर से मिलते तो वो उनको जो भी मांगते हो देने के लिए तैयार रहते, रथ यात्रा के। और जब दूसरे भक्त भी कुछ जाते हैं तो बोलते आप जयानंद ठाकुर के साथ आए हैं या उनका नाम ले रहे हैं, इसलिए हम देने को तैयार हैं। सबसे ये वैष्णव का गुण है कि वो अपने आप से सबको आकर्षित करते हैं। पर यहाँ बताया गया वैष्णव इज लाइक परमात्मा आत्मवत्, इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव भगवान है, लेकिन परमात्मा के गुण उस वैष्णव में प्रकट होते हैं। एक वैष्णव यानी परमात्मा के संपर्क में हमेशा शुद्ध वैष्णव। जैसे मैंने एक बार एक लीला बताई है प्रभुपाद जी के, टोल्ड यू दैट्स, एक बार एक डिवोटी पूछ रहे थे प्रभुपाद से कि परमात्मा इज ऑलवेज स्टैंडिंग इन द हार्ट, परमात्मा हमेशा खड़े रहते हैं, कैसे होता है हर समय खड़े रहते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले एक मिनट, आँख बंद करके फिर बोले नहीं अभी बैठे हुए हैं। टच विद परमात्मा, और इसलिए उसके अंदर परमात्मा के गुण आने लगते हैं। जैसे परमात्मा सुअर के हृदय में भी हैं और परमात्मा हाथी के हृदय में भी हैं, और जो शुद्ध भक्त है वो उस दृष्टि से देखते हैं, समादृष्टि, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अन्तिष्ठति, वो देखते हैं सबके हृदय में भगवान है, इसे सबका आदर करना। श्री भागवत की 11वें स्कंध में भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि क्या लक्षण है एक शुद्ध भक्त के, और उन लक्षण में बताते हैं कि जो महाभागवत भक्त है वो सबके हृदय में भगवान को देखता है और वो सबको अपने से ज़्यादा अच्छा मानता है, वो सबको आदर देता है। वो एक्चुअली कुछ देखता ही नहीं है, उसे सब जगह कृष्ण ही देखता है। इसलिए प्रचार के लिए महाभागवत भक्त होते हैं वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर प्रचार करते हैं, नहीं तो महाभागवत स्तर पर व्यक्ति देखते हैं सबके अंदर भगवान है। श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज के लिए, जैसे चंद्रमा की किरणें होती हैं वो बिना भेद के सब जगह पर अपना प्रकाश देते हैं, ये सूर्य के किरणें, वैसे एक वैष्णव है वो अपनी कृपा सबके लिए बांटते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो, सबके हित, सबके प्रति हित करने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज के मॉडर्न प्रतिनिधि सबको कृपा बांटते हैं। एक बार तो प्रभुपाद अफ्रीका में गए थे जहाँ पर लोग कई असंस्कृत थे, एक बार तो प्रभुपाद जी गए और अगले दिन सवेरे देखा तो उन्होंने कपड़े अपने सुखाने डाले थे, वो मिले नहीं, और गुरु पूजा में देखा तो कुछ लोगों ने भी कपड़े पहने हुए थे। इवन वर्सो दे डिड नॉट नो द एटिकेट, लगा कोई कपड़ा मिला तो पहन लिया उन्होंने। प्रभुपाद ऐसे लोगों के लिए भी उद्धार के लिए गए थे प्रहलाद महाराज के गुरु। तो इसके लिए शब्द यूज़ किए यहाँ पर आर्य, आर्य का मतलब जो भक्ति में आगे बढ़े हुए, आर्य 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 समाज का रियल मीनिंग ये होता है, बोगस आर्य समाज नहीं, रियल आर्य समाज डिफरेंट, रियल आर्य यानी वैष्णव। प्रभुपाद से दैट आर्य मीन्स वन इज एडवांस्ड इन नॉलेज, वैदिक संस्कृति में जो आगे बढ़े हुए हैं ये सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं एट द प्रेजेंट द वर्ड आर्य इज यूज फॉर गॉडलेस पीपल, नास्तिक लोग वो आर्य समाज में। तो प्रहलाद महाराज के अंदर ये गुण थे कि वो आर्य, आर्य यानी यहाँ पर जो गुरु की आज्ञा मानने के लिए बहुत उत्सुक हों उसको आर्य बोला गया, और दूसरी और वो दुख में भी उनका मन कभी विचलित नहीं होता। ये गीता में भी लक्षण बताया गया भगवान के भक्तों के कि सुख और दुख को समान समझते, कभी विचलित नहीं होते, और इस भौतिक दुनिया के सब चीज़ों को वो बेकार मानते और स्थिर बुद्धि से भगवान का ध्यान करते हैं। ओ किंग प्रहलाद महाराजेस गुड क्वालिटीज आर स्टिल ग्लोरिफाइड बाय लर्नेड सेंट्स एंड वैष्णवस, एज ऑल गुड क्वालिटीज आर फाउंड इन द सुप्रीम लॉर्ड, दे ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर एवर इन हिज डिवोटी प्रहलाद महाराज। कि प्रहलाद महाराज के सद्गुण सारे वैष्णवों में और संतों में सभा में गाए जाते हैं, और जैसे भगवान के अंदर सद्गुण है वैसे प्रहलाद महाराज के अंदर भी सद्गुण बताएगा। श्री प्रभुपाद यह बताते हैं कि कैसे जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उसके अंदर वही गुण आने लगते हैं जो भगवान के अंदर है। जैसे भगवान समदृष्टि है ऐसे भक्त भी समदृष्टि है, जैसे भगवान के गुण सब जगह गाए जाते हैं ऐसे भक्तों के भी गुण सब जगह गाए जाते हैं। फर्क यह है कि भगवान के अंदर वो गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं और शुद्ध भक्त के अंदर वो गुण जो है अंश मात्रा में होते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि कहानी बताते बोल रहे हैं कि जो भी सभा होगी जिसमें भक्तों के बारे में चर्चा होगी वहां पर हमेशा प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया जाएगा। प्रहलाद महाराज के गुणों को गिना नहीं जा सकता, उनका मुख्य गुण था वासुदेव भक्ति, भगवान वासुदेव या कृष्ण के प्रति भक्ति और पूर्ण श्रद्धा, उनके पूर्व भक्ति के कारण वो भगवान के प्रति हमेशा आसक्त थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जयदेव गोस्वामी के कोट करते हैं, केशव धृता नरहरि रूप जय जगदीश हरि। प्रहलाद महाराज भगवान के नरसिंह भगवान के भक्त थे जो कि केशव कृष्ण ही, तो जो नरसिंह भगवान के प्रति आसक्ति है वो कृष्ण की आसक्ति है। हर एक जीव जो है उसका भगवान के साथ एक विशेष रूप के साथ आकर्षण होता है, और प्रहलाद महाराज का विशेष संबंध नरसिंह भगवान के साथ, हमेशा वो कृष्ण के विचारों में रहते हैं। बचपन से उनको कोई खेलने कूदने में कोई रुचि नहीं होती, जब वो क्लासरूम में जाते तो अपने मित्रों के साथ कृष्ण कथा करते, ये मित्र बोलते कि प्रहलाद अभी तो बचपन का समय है, ये बुढ़ापे के लिए VRS के बाद में रिटायरमेंट के बाद में, ये प्रहलाद महाराज के नहीं कौमारम आचार्य प्रति धर्मन भागवत चाइल्डहुड से बचपन से, और वो भौतिक विषयों में बिल्कुल शांत रहते हैं, और आध्यात्मिक विषयों में बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत उत्सुक रहते थे। उनका मन हमेशा कृष्ण भावना में मग्न रहता। हर्षिल प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत से वो श्लोक बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव जो है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान को देखते, जहाँ भी देखते, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। इसके अंदर आंखों में प्रेम का अंजन है, वो हर समय भगवान को देखता है हर समय। एक बार न्यूज रिपोर्टर प्रभुपाद से पूछ रहे थे कि आपने भगवान को पहले कब देखा, वेन वाज द फर्स्ट टाइम यू सॉ गॉड। तो प्रभुपाद सोचा एक रिपोर्टर को क्या समझाए, इसलिए प्रभुपाद जी बोले भगवान सब जगह पर हैं, भगवान कण कण में हैं, भगवान सबके हृदय में है। नहीं नहीं स्वामी जी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस प्रॉपरली, व्हाट आर माय क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू फर्स्ट सी गॉड, भगवान कभी देखे। प्रभुपाद जी बोले कि भगवान प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है ना, जिसके आंखों में प्रेम के अंजन लगे हैं वो भगवान को देख सकते। नहीं नहीं स्वामी जी मेरा प्रश्न आप समझे नहीं, मेरा मतलब है कि आपने भगवान को पहले कब देखा। तो प्रभुपाद कहने लगे कि आप भी भगवान को देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, भक्ति योग एक तरीका है। नहीं स्वामी जी आप समझे नहीं, व्हेन डिड यू फर्स्ट सी गॉड। तो प्रभुपाद जी बोले व्हेन आई वाज 4 years old। एंड व्हाट ही मेंट वाज दैट आई रिमेंबर फ्रॉम दैट ही वाज ऑलवेज सीइंग गॉड। और एक बार जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो प्रभुपाद जी बोले ऐसे कि क्या अगर मैं जवाब दूंगा तो क्या आप भरोसा करोगे इस पर। हाँ मैं भरोसा करूँ। प्रभुपाद जी बोले देर वॉज नेवर अ टाइम वेन आई एम नॉट सीइंग गॉड, ऐसा कोई समय नहीं, हर समय भगवान देखते। प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के तरह महाभागवत भक्त हैं, ऑलवेज सीइंग कृष्ण, ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्ण, ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जब संकीर्तन आंदोलन में ऑस्ट्रेलिया में डिवोटीज पर आक्रमण हुआ, संकीर्तन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को जब पुस्तक बांट रहे तभी बहुत विरोध हुआ और डिवोटीज को जेल में डाला गया। तो प्रभुपाद जी बोले भक्तों जी का नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो, नरसिंह भगवान मदद कर संकीर्तन, स्पेशली संकीर्तन आंदोलन। जयानंद ठाकुर के भी इसमें एक लीला में है प्रसंग ऐसा, जस्ट वॉकिंग बाय द रोड स्टोरी, जा रहे थे पैदल कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और एक व्यक्ति बहुत जल्दी चिल्ला के उनको कीर्तन को रोकने का प्रयास कर रहा था। तो जयानंद ठाकुर पीछे मुड़ के बोले देखो ये हरे कृष्णा मंत्र है, ये कृष्ण का अवतार है, आप तकलीफ मत पैदा करो नहीं तो कृष्ण तुमको मार डालेंगे। लेकिन वह सुन नहीं रहा। भक्त थोड़ा आगे गए, देखा तो पीछे स्पीड से एक बस आई और उस व्यक्ति को नष्ट कर दिया उसी समय इंस्टेंटली। तो प्योर डिवोटी कुछ बोलता है तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। इसे मिस्टर नायर के बारे में आप जानते हैं जो हिरण्यकश्यप के अवतार में सो और बहुत लोगों को धोखा दिया था, वो लोगों को बोलता था कई लाखों रुपए की जमीन थी, वो बोलता था 1 लाख में ले लो, और बाद में फिर वो 1 लाख भी हड़प लेता था और जमीन नहीं देता था। उसको सोचा था मैं सबको धोखा दूंगा, लेकिन उससे बड़े धोखे भाई प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी जमीन ले ली और देने को तैयार नहीं था, बहुत डिले कर रहा था। फाइनली अंत में एक दिन शांत हो गए, उसकी मृत्यु हो गई और प्रभुपाद जी बोले कि लॉर्ड नरसिंहदेव पर्सनली केयर ली और नरसिंहदेव उसको मारा। तो प्रभुपाद थे आई प्रेड फॉर इट, प्रभुपाद प्रेड प्रभुपाद। हमारे टीचिंग में भी जब भी कोई विरोध आए ऑफकोर्स हम प्रभुपाद की नकल नहीं कर सकते, हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान संकीर्तन आंदोलन में कोई विरोध नहीं। जब 1977 में जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब था, मैं उस समय जीव मंदिर में जाता था, तभी सब भक्तों को प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप प्रार्थना कर सकते हैं, यू कैन प्रे लाइक दिस दैट ओ लॉर्ड इफ़ यू सो डिजायर प्लीज प्रोटेक्ट श्रील प्रभुपाद, प्लीज प्रोटेक्ट अवर स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद। नरसिंह भगवान इज स्पेशली वेरी वेरी वेल नोन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज डिवोटीज, विघ्न ऑल द ऑब्स्टेकल्स। मेन ऑब्स्टेकल है हमारे स्वयं के अनर्थ, भक्ति के आने वाले बाधाएं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के नियम से नष्ट होना ही है, फ्रॉम डस्ट दाउ हैड कम टू डस्ट दाउ हैड रिटर्न। लेकिन आज हम भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करें कि हमारे भक्ति की रक्षा करें, जो भी हमारे नाम के प्रति रुचि है वो बढ़ती रहे और जो नाम में बाधाएं आ रही वो नष्ट हो जाए। दैट इज द वो एक प्रार्थना है जो भक्त अर्पण करते हैं। प्रभात महाराज के बताया कि बचपन से उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की कोई विचार नहीं थी। परीक्षित महाराज भी जब छोटे थे बचपन से कृष्ण भक्ति करते। प्रभुपाद जी स्वयं के बारे में बताते कि जब प्रभुपाद भी कलकत्ता में थे तो राधा गोविंद की सेवा करते और रथ यात्रा छोटे छोटे रथ बनाकर खेलते थे। तो ये जो वैष्णव जो पहले से जिनको भक्ति के संस्कार हैं, जैसे आप सब जानते हैं प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे तभी उनको नारद मुनि ने उपदेश किया था। और ऑफकोर्स एब्सोल्यूट स्तर पे हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त पहले से ही थे, बिकॉज महाभागवत। अरे महाभागवत का लक्षण यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं नैसर्गिक रति, नेचुरल अटैचमेंट फॉर कृष्ण, स्वभाव से विरक्ति, भौतिक संसार से विरक्ति और कृष्ण में रति, कृष्ण में अटैचमेंट आ सकती। प्रभुपाद गिव्स अ वेरी प्रभुपाद बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा बोला जाता है अगर किसी को राहु या शनि का आक्रमण हो तो कोई भी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा बोलते हैं ना कोई शनि लग गया है, कोई व्यक्ति को शनि हो गया तो बिजनेस भी नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन प्रहलाद महाराज को एक और प्लैनेट का इन्फ्लुएंस था। प्रभुपाद जी बोलते हैं इन्फ्लुएंस बाय द कृष्णा प्लैनेट। नॉट थिंक ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, वो और कुछ सोच नहीं सकते थे। ये महाभागवत आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको ये ग्रह लग जाए। आज ग्रहण का दिन है, 12:30 ऑनवर्ड्स आफ्टरनून इज ग्रहण ऑल्सो। रूपगोस्वामी प्रभु टोल्ड मी यस्टरडे आज ग्रहण है ना, ग्रहण का दिन है। ग्रहण का दिन एक्चुअली अमंगल माना जाता है, लेकिन जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं तो सब अमंगल भी मंगल हो जाते हैं। प्रभुपाद राइट्स हियर दैट इवन इफ वन इज एन एनिमी ऑफ कृष्णा अ महाभागवत सीज हिम टू बी एंगेज इन कृष्णा। प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे हैं कि सब कृष्ण के भक्त, कोई दिख रहा है व्यक्ति काम क्रोध लोभ की सेवा में करते ये भी भक्त है क्योंकि कृष्ण की माया की सेवा कर रहे हैं। माया कृष्ण की दासी है और वो माया की सेवा कर रहा है, इसलिए दास दासानुदास सर्विंग कृष्ण। ऑफकोर्स प्रभुपाद सेज दैट प्योर डिवोटी हैज टू कम डाउन। एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और was telling about different class of devotee, first class devotee, second class devotee, third class devotee. First class devotee sees everybody is devotee of Krishna. Sub second class he makes difference that this is devotee, this is non-devotee, this is innocent. Third class he says I am only devotee. तो एक कोई मूर्ख आदमी था वो जोर से चिल्ला के बोला प्रभुपाद आप कौन से क्लास के। प्रभुपाद out of his natural humility नम्रता से बोले आई एम 10th क्लास गरीब। और ये जब अभी ये जो 5-6 अध्याय के बाद जब एंड आता है ये लीला का, तो प्रहलाद महाराज जब भी भगवान नरसिंहदेव को स्तुति करने लगते हैं, सब देवता स्तुति कर रहे होते हैं लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं होते, उनका क्रोध शांत नहीं होते। इवन लक्ष्मी देवी भी अपने पति को संतुष्ट नहीं करते। प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं ब्रह्म आदय सूर्य सब देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं वो आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं मूर्ख हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं कैसे प्रसन्न कर सकूँ। ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है वैष्णव का ये प्रहलाद महाराज के अंदर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रहलाद बचपन से इतने मग्न थे कृष्ण भावना में कि उनके लिए जैसे छोटे बच्चे के लिए खेलना बहुत खेल उसे कहा जाए कि खेलना बंद करो वो छोड़ेगा नहीं, ऐसे उनके लिए प्रहलाद के लिए कृष्ण के बारे में सोचना वो कभी नहीं छोड़ सकता। यहाँ बताया गया कि बचपन में कभी कभी वो चलते हुए खाते हुए ये सब क्रियाएं ऑटोमेटिकली होते, उनका मन कृष्ण में लगा रहता, खा रहे होते सो रहे तो उनको पता नहीं चलता। जैसे गीता में बोलते हैं ना कि इंद्रिय व्हाट इज दैट वर्स 5th चैप्टर कि इंद्रियों विषयों से संपर्क आ रहे हैं और जो इसको पता नहीं चलता जो सत्य प्रज्ञ व्यक्ति होता है। ऐसे प्रहलाद महाराज इतने एब्जॉर्ब थे बस वो भगवान के प्रेम में मग्न थे, उनको कोई पता नहीं चलता। लेकिन जैसे माता पिता बच्चे का ख्याल रखते हैं, ऐसे भगवान गोविंद हमेशा प्रहलाद का ख्याल रखते थे। तभी श्री प्रभुपाद का इसके बारे में एक लेक्चर सुन रहा था, नरसिंह भगवान की लीला। मैंने सोचा था कि प्रभुपाद जी कुछ लीला बताएंगे। श्री प्रभुपाद 20 मिनट लेक्चर में यही बताते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और लास्ट में बोलते हैं सो टुडे इज नरसिंह जयंती, नरसिंह चतुर्दशी, सो वी शुड रिमेंबर डेथ इज कमिंग, डेथ इज कमिंग, एंड ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 This is the best way of celebrating Narasimha Chaturdashi. So, I think I'll stop here. Hiranyakashipu, देखिए अगर हम सब श्लोक करें तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन I'll skip this section. जब हिरण्यकशिपु, ये कुछ काफी वर्षों के बाद है, जब हिरण्यकशिपु एक बार प्रहलाद महाराज को शंडल अमर के स्कूल में भेजते हैं, और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि प्रहलाद आपने सब चीज़ें सीखी हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है वो बताओ मुझे, प्लीज रिपीट टू मी वॉट एवर यू थिंक इज द बेस्ट ऑफ दैट नॉलेज। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति भक्तिश्च नवलक्षण क्रियते भगवती अर्ध तन्मनते अधितम उत्तम। अपने पिताजी को बोलते हैं पिताजी ये श्रवण कीर्तन ये भक्ति के 9 विद्याएं हैं, 9 विधि हैं, और जिसने भगवान को समर्पण किया है 9 विधि के द्वारा वही सर्वोत्तम व्यक्ति माना जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद यहाँ पर 9 विधि का डिटेल में बताते हैं, और प्रहलाद महाराज के वचनों को सुन के हिरण्यकशिपु गुस्से में आकर अपने टीचर शंड को बुलाकर बोलते हैं शंड और अमरक को कि तुमने मेरे पुत्र को गलत चीज़ सिखा दी, असत संग असत कहते हैं गलत चीज़ सिखा दी, और कहने लगे कि कभी कभी शरीर में बीमारी हो जाती है, और शरीर के अगर एक भाग में कोई रोग हो जाता है तो बाकी शरीर की रक्षा करने के लिए उस रोगी भाग को नष्ट करना जरूरी होता है। ऐसे ही प्रहलाद हालांकि हमारे परिवार का व्यक्ति है, इसका नाश करना जरूरी है। और हिरण्यकशिपु अपने पिताजी को बुलाकर अपने पुत्र को प्रहलाद को बुलाकर पूछते हैं कि अगर मेरे शंड और अमर ने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया। तब ये बहुत फेमस श्लोक जिस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, एक जो प्रहलाद महाराज की शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट भाग है, मतिर न कृष्ण परतो स्वतो वा मीतो विपद्यते गृह प्रतान अदांत गोबीर विषताम तमिश्रम पुनश पुनश चर्विता चर। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जो व्यक्तियों की इंद्रियां वश में नहीं हैं वो चबाए हुए को चबाते रहते हैं और भौतिक जीवन का ही आनंद देना चाहते हैं, और उनकी कृष्ण के प्रति रुचि कभी जागृत नहीं होती अपने स्वयं के प्रयास से या दूसरों के प्रयास से या दोनों के मिश्रण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद वो बताते हैं कि कैसे कृष्ण में रति जागृत होती है। मह यशम पदो राजाभिषेकम, कि अगर हम अपने प्रयास से या दूसरों के उद्देश्य से भी कृष्ण भक्ति में रुचि जागृत नहीं होती, लेकिन जब किसी व्यक्ति को एक महात्मा की कृपा प्राप्त होती है तब वह आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो इस भौतिक जीवन की तुलना की गई है चबाए हुए के चबाने के साथ, पुनः पुनः चलता चबा। जैसे कोई व्यक्ति गन्ने का रस निकाल दें, रसवंती गृह रस निकाल दें, और उसके बाद जो बच्चा होता है उसका रस निकाल दें, उसका फिर निकाल दें, और बाद में बच्चा हो उसको कोई चबाने का प्रयास करें। ऐसे भौतिक जीवन है, पुनश पुनश चर्वित चर्वनाना, ये व्यक्ति जो है चबाए हुए चबाने का प्रयास करें। लेकिन बताते हैं जब कोई व्यक्ति वैष्णवों के चरणों की धूली से अपने पूरे शरीर को स्मियर्स द बॉडी यानी पूरा लिप्त कर देते तब व्यक्ति को भगवान की चरणों में आसक्ति जागृत होती है, तब उसको कृष्ण में मति जागृत होती है। श्री प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन कोट करते हैं कि कैसे भौतिक विद्या प्राप्त करने से व्यक्ति बहुत गधे के समान बन जाता है, इसका ज्ञान बहुत बढ़ जाता है लेकिन वो उसका रहस्य नहीं समझ पाता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का सौभाग्य होता है कि वो वैष्णव के संपर्क में आता है, तब वो जान लेता है कि जड़ विद्या मायेर वैभव, जड़ विद्या जो माया के वैभव है। और यही बात प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने अपने शरीर को भक्तों के चरणों की धूली से सजा लेता है, तब वो भगवान कृष्ण में रुचि जागृत कर सकता है। और इसका प्रैक्टिकल अर्थ है कि वैष्णवों की चरणों की धूली का मतलब है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके बनाए उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। माधवेंद्रपुरी का भी आज माधवेंद्रपुरी का भी अपीयरेंस है। माधवेंद्रपुरी ऐसे वैष्णव कि भगवान कृष्ण के लिए जब उनको बताया गया कि चंदन लाने जाना है जगन्नाथपुरी, तो तुरंत निकल पड़े चंदन लाने के लिए। कई हजारों किलोमीटर कई बाधाओं को सहन करते हुए और स्वयं भगवान उनके लिए सुविधाएं करते हैं, उनके लिए खीर लेकर आते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ये परम वैष्णव थे और उनके दो शिष्य थे, एक बहुत सारे शिष्य थे लेकिन दो शिष्य जिनका आपस में कंपैरिजन किया गया, एक ईश्वरपुरी और दूसरा रामचंद्रपुरी। तो ईश्वरपुरी ने जो महत्पद रजोभिषेकम, यानी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताया, इसलिए वह आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। लेकिन रामचंद्रपुरी अपने गुरु की आज्ञा पालन नहीं करते हुए बल्कि अपने गुरु की निंदा करने लगे इनडायरेक्टली। वो कहने लगे कि ये अंत समय माधवेंद्रपुरी एक श्लोक बोल रहे थे, मथुरा ना पाई लू, मैं मथुरा को नहीं प्राप्त कर सका, कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सका, सिविरा में बोल रहे थे। तो रामचंद्रपुरी उनको बोलने लगे कि आप क्यों वृंदावन या कृष्ण का ध्यान कर रहे हो, आप ब्रह्म पर ध्यान करो, सर्वव्यापी ब्रह्म। इस तरह से अपने गुरु को उपदेश करने का प्रयास कर। ये सुनकर माधवेंद्रपुरी इतने क्रोधित हुए, उसको डांट कर कहने लगे कि तुम मेरे से मेरे सामने मत रहो, अगर तुमको देखते हुए मेरी मृत्यु हुई तो मेरी असद गति होगी, तो मेरे सामने से चले जाओ। और क्योंकि रामचंद्रपुरी ने अपने अपने गुरु के प्रति अपराध किया था, इसलिए वो दिव्य मार्ग से गिरकर इंद्रतृप्ति के मार्ग पर आ जाते हैं, मेंटल स्पेक्युलेटर बन जाते हैं। और बाद में वो चैतन्य महाप्रभु की भी निंदा करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते हैं तो वो कभी देखते हैं कि कुछ चींटियाँ आ रही हैं, तो बोलते ओ देखो चींटियाँ आ रही हैं, मतलब कभी स्वीट्स खाए होंगे इस तरह से। तो जैसे एक ही पानी होता है, उसी पानी को लेकर एक जगह पर आम का मीठा पेड़ उग जाता है और उसी पानी से जो है कांटे का भी पेड़ उग जाता है, तो पानी वही है। ऐसे एक सदगुरु के दो शिष्य रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, वहीं से उसी के संपर्क में आने से अलग अलग व्यवहार करने से उनको अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो ऑफकोर्स वैष्णव का संग किसी भी तरीके से मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम अनुकूल रूप से सेवा भावना से स्वीकार करते हैं तो हम प्रहलाद महाराज की तरह हम भी ये दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बोला 25 माला, लेकिन प्रभा जी बोले कि मैंने बोला कि हमेशा जप करना चाहिए, स्पेशली ये जैस नरसिंह चतुर्दशी जन्माष्टमी एकादशी इन दिनों में हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण कर सके, का नाम ले सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय।